ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শিল বহুপাধি কি সচিদানন্দ শিল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর কি গ্রন্থদাস শ্রীমদ ভাগবতম কি জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দের হরি হরি বোল, জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দের হরি 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 বোল। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। নারায়ণং নমস্কৃতং নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরহে। নষ্টপ্রায়েষু অবদ্রেষু নিত্যং ভাগবত সেবয়া, ভগবতীর উত্তম শ্লোকে ভক্তির ভাবতী নৈষ্টিকী। গ্রন্থরাজ্যমদ ভাগবতম দশম স্কন্দ দশম অধ্যায় শ্লোক সংখ্যা 42 10 10 42। তান গচ্ছতম মৎপরমৌ নলকুবরা সাধনম সঞ্জাতা মহিভাব ওয়াম ইস্পিতা পরমা হবব তদ্গচ্ছতম মৎপরমৌ নলকুবর সাধনম সঞ্জাত মহি ভাবাম সঞ্জাত মহি ভাবাম ইস্পিতা পরমা ভব ত্বদ্গচ্ছতম মৎপরমৌ নলকুবর সাধনম সঞ্জাতা মহি ভাবা সঞ্জাত মহি ভাব বামা ইস্পিতা পরমা ভব ত্বদ্গচ্ছতম মৎপরমৌ নলকুবরা সাধনম সঞ্জাত মহি ভাব বামা ইস্পিতা পরমা ভব ত্বদ্গচ্ছতম মৎপরমৌ নলকুবর সাধনম সঞ্জাত মহি ভাব বাম ইস্পিতা পরমা ভব শব্দার তদ্গচ্ছতম। আপ তুম দোনো যা সকতে হো, মত পরমৌ মুঝে আপনে জীবন কা পরম লক্ষ্য মানকর, নলকুবর হে নলকুবর তথা মণিগ্রীব, সাধনম আপনে ঘর, সঞ্জাত রসপিক্ত ভই মুজমে ভাব ভক্তি ওয়াম তুমারে দ্বারা ইস্পিত অভিলোষিত পরম সর্বোচ্চ সারি ইন্দ্রিয় সে সদৈব সংলগ্ন অভব জিসে জগৎ সে জানা আনা না হো। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री गोपाल जी के द्वारा श्री गोपाल की जय। हे नालकोर तथा मुनिदी, अब तुम दोनों अपने घर वापस जा सकते हो, क्योंकि तुम मेरे भक्ति में सदैव लीन रहना चाहते हो, अतः मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न करने के तुम दोनों की इच्छा पूरी होगी और अब तुम उस पद से कभी भी नीचे नहीं गिरोगे। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है भक्ति पद को प्राप्त करना और भक्ति कार्य में सदैव लगे रहना। ऐसा जानकर हे नल कुबेर तथा मणिग्रीव ने उस पद को प्राप्त करना चाहता और भगवान ने उनकी ये दिव्य अभिलाषा पूरी होने का आशीर्वाद दिया। ओम ज्ञानमिदं गैणंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति शापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सकृजातं सहगणो रघुनतान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणो ललिताशिवीशखण्डितंश्च। नमयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यतदेशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विशोभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करति वाचलं पंगुं लंघयते गिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। इस अध्याय का शीर्षक है जमलार्जुन भिक्षु का उद्धार। तो इस अध्याय में हम लोग अंतिम पर्याय में पहुंच गए। आज इसका अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। इसके बाद और एक श्लोक भी है जिसका कोई तात्पर्य नहीं लिखे है श्री गोपाल जी ने, जिसके लिए कि सोच लीजिए कि यह अध्याय के आज का ये अंतिम श्लोक। तो लगातार बहुत दिन तक हम लोग शोभन कर रहे इस अध्याय का ऊपर, इस अंतिम में पहुंच गए। इसमें तात्पर्य में श्री गोपाल जी लिखे है कि जमलार्जुन किस तरीका से उद्धार प्राप्त हुए थे। जमलार्जुन का ऐसा कोई गुण नहीं था जिसके द्वारा भगवान को दर्शन कर सकते थे। लेकिन प्रश्न आ सकता है कि कोई भी गुण नहीं है तो किस तरीके से उन्होंने भगवान को दर्शन की, कि ऐसा कोई गुण नहीं थे उनका अंदर जिसके द्वारा भगवान को दर्शन कर सकते थे। धन के द्वारा गर्वित होकर ऐसा कोई गूढ़ो काम नहीं है जो उन्होंने किए नहीं दोनों भाई ने, फिर भी भगवान उनको दर्शन दिए। भगवान किसके लिए दर्शन देते, कि भगवान का परम प्रिय भक्त नारद मुनि का वचन को शुद्ध करने के लिए भगवान ये दोनों को दर्शन दिए, साथ साथ उद्धार भी किए। तो इसमें वर्णन कर रहे कि नल कुबेर तथा मुनिगृह शुरुआत में दो प्रकार का संघ होता है। इसको एक को कहते हैं कि जोजित संघ और दूसरे को कहते हैं कि भगवत संघ। तो नल कुबेर तथा मुनिगृह जीवन का शुरुआत में जोजित संघ प्राप्त किए थे। इस ज्योजित संघ का अर्थ क्या है, श्री भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन किए। बहुत सारे ज्योजित संघ पर श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत सारे भजन भी लिखे हैं। जय श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय। कि ज्योजित संघ तथा भगवत संघ, नल कुबेर तथा मणिगृह धन के द्वारा गर्वित होकर ज्योजित संघ को प्राप्त की थी। ज्योजित संघ का अर्थ होता है जिन्होंने अपना धन के द्वारा गर्वित होकर पड़ोसी को संग करते हैं, उसको कहते हैं कि ज्योजित संघ। जैसा कि नल कुबेर तथा मुनिगृह का इतना अहंकार था कि कुबेर का संतान हो हम दोनों, तो जो भी चाहे हम लोग कर सकते हैं, जिसके लिए इतने सारे स्त्री संघ किए थे उन्होंने, जिसको कहते कि ज्योजित संघ। आज यही ज्योजित संघ करने वाला व्यक्ति भी एक मुहूर्त के लिए अगर साधु संघ किए तो जागतिक आसक्ति वर्जित होकर मुक्त हो सकता है। जिसके लिए कहते हैं कि साधु संग सर्वस्वास्थ्य कय लवमात्र साधु संग सर्वसिद्धि हय। लवमात्र, लव का अर्थ होता है जो कल का श्लोक में वर्णन भी किए, लव का अर्थ होता है कि एक सेकेंड को 11 भाग में विभाजित करने के बाद जो अंश रहता है उसको कहते कि लव। तो लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो नल कुबेर और मणिग्रीव ये दोनों लव मात्र साधु संघ किए थे। थोड़ा समय के लिए इनको नारद मुनि का संघ प्राप्त हुए थे, जिसके लिए थोड़ा समय साधु संघ करने का फल उनको मिले, भगवत प्राप्ति हुई। और इस ज्योजित संघ के द्वारा, इसमें टोपा जी भी वर्णन भी किए हैं, पीछे सारे बहुत सारे श्लोक में टोपा जी तात्पर्य में लिखे हैं कि ज्योजित संघ के द्वारा क्या होता है। भक्तिविनोद ठाकुर इसमें वर्णन कर रहे हैं कि ज्योजित संघ छाड़ो सबे छाड़ो रे मुनेरो वासना। इसका अर्थ होता है कि ज्योजित संघ सर्वमते छाड़ो रे मुनेरो वासना, मतलब इस ज्योजित संघ के द्वारा कोई भी व्यक्ति का इंद्रिय भोग करने का जितना मन में इच्छा है वो इसके द्वारा कर सकते हैं। छाड़ो रे मुनेरो, मन में जो भी कुछ इच्छा है इस ज्योजित संघ के द्वारा वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भगवत संघ इसका पूरा जस्ट ऑपोजिट, पूरा उल्टा है इसका। भगवत संघ में लवमात्र साधु संग सर्वशास्त्र कह, एक सेकंड के लिए भी अगर किसी को साधु संग को प्राप्त किए तो सर्वसिद्धि है, पूरा जीवन को उद्धार कर सकते हैं। जिस तरीका से नल कुबेर और मुनिग्रीव भगवत संघ के कारण जीवन को उद्धार कर पाए और भगवत दर्शन प्राप्त किए थे, तो ये जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है साधु संघ का। जैसे कि कर्म बंधन में हर व्यक्ति फंस जाते हैं, वही कर्म बंधन, वही कर्म अगर भगवान केंद्रित हो जाए तो व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो सकता है। श्री प्रभुपाद जी इसमें उदाहरण में बताया कि एक मिलिट्री जिसको बोलते हैं, मतलब जिसमें कमांडर रहता है, वनवाली को बहुत अच्छे तरीके से पता है इसका, कमांडर, तो कमांडर का नियंत्रण में अगर कोई सिपाही, उसका नियंत्रण में अगर कोई कांस्टेबल रहे, तो कमांडर अगर उसको बोल दिए कि आप इसको गोली चलाओ, तो एक गोली में अगर 100 व्यक्ति भी मर गए तो कांस्टेबल का कुछ केस नहीं होता है। क्यों नहीं केस होता है? ना कमांडर ने उनको निर्देश दे दिए थे कि आप गोली चला सकते हो, और वही कांस्टेबल, वही सिपाही अगर बिना कमांडर के निर्देश में अपना पास ही बंदूक है, उसमें बहुत सारी गुलियां भरा है, तो अगर उन्होंने सोच लिए कि ये बंदूक मेरे पास है, इसी बंदूक के द्वारा मैं किसी को गोली कर सकता हूं, कमांडर का निर्देश का कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसी तरीका से उन्होंने अपना बंदूक के द्वारा गोली चलाया, तो तुरंत उसको क्या होता है ना, केस डाल देते हैं, उसको आके पुलिस पकड़ के लेके जाता है, फिर कोर्ट में जाना पड़ता है, बहुत सारे कर्म रहता है। तो हमारे भक्ति जीवन में भी इसी तरीका से किसी का निर्देश में अपना जीवन को बिताना है। तो नल कुबेर और मणिग्रीव नारद मुनि के द्वारा बाह्यिक दृष्टि में, श्री प्रभुपाद जी वर्णन भी किया है इसका पहले वाला श्लोक में, कि बाह्यिक दृष्टि में लगता है कि नल कुबेर और मणिग्रीव नारद मुनि के द्वारा साप मिले थे, लेकिन वास्तविक में ये साप नहीं था उनके जीवन के लिए, उनके जीवन के लिए ये आशीर्वाद रूप से आया है। किस तरीके से आशीर्वाद प्राप्त हुए कि साधु के द्वारा किसी को अगर कुछ साप भी दे, बाह्यिक दृष्टि में लगता है कि वो साप है, लेकिन अगर हृदय से अगर उसको वही शब्द को अगर कोई व्यक्ति चिंतन करे तो साप नहीं है, वो उनके लिए आशीर्वाद हो जाता है। जिस तरीके से नल कुबेर तथा मणिग्रीव को बाह्यिक दृष्टि में लगता है कि साप दे दिए नारद मुनि ने, लेकिन अगर साप देता था तो उसको पतित हो जाते थे वो दोनों, लेकिन पतित नहीं हुए, अधोगति प्राप्त नहीं हुए, उद्धोगति प्राप्त हो गए जिन्होंने भगवत दर्शन किए थे। तो साधु संत महात्मा कभी किसी को साप नहीं देते हैं, अगर कभी किसी को लगता भी है कि कुछ कोटु शब्द बोल दिए, कोई रूढ़ो वाक्य प्रयोग भी किए, लेकिन इसी रूढ़ वाक्य जिसको तरफ प्रयोग किए वो उनके लिए कल्याण होता है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी अपने बहुत सारे शिष्य को बहुत बार उन्होंने रास्केल, नॉनसेंस, इडियट बोल दिए। श्री प्रभुपाद जी का बहुत सारे अंतरंग प्रिय शिष्य है जिन्होंने श्री प्रभुपाद जी का मुखारविंद से कम हजारों बार रास्केल, नॉनसेंस, इडियट सुना। मैंने बहुत सारे शिष्य का मुखारविंद से मैंने श्रवण भी किया हूं कि अपना जीवन को सुधारने के लिए श्री प्रभुपाद जी का सबसे जो कोटु शब्द था वो रास्केल, नॉनसेंस मैंने जिंदगी में बहुत बार सुना, जिसके लिए मैंने अपना जीवन को मैंने सुधार लिया। अगर भौतिक जीवन में जाकर किसी को अगर इसी तरीके से आपने रास्केल बोले, अगर उन्होंने कोई भी गलती भी किए, अगर आपने कुछ रास्केल, नॉनसेंस, इडियट बोल दिए, तो आपको क्या फल मिले? कान का नीचे कसके थप्पड़। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी अपना अंतरंग प्रिय शिष्य को बहुत बार उन्होंने इसी तरीके से रास्केल, नॉनसेंस, इडियट भी बोल दिए थे, लेकिन वही रास्केल, नॉनसेंस, इडियट शब्द भक्त का जीवन के लिए एक आशीर्वाद हो गए। श्री भक्ति शांत सरस्वती ठाकुर इसी धराधाम में अब प्रकटित नहीं होते थे। श्री प्रभुपाद जी श्री भक्ति शांत सरस्वती ठाकुर का अपना प्रिय शिष्य होकर पूरा देश विदेश में जाकर अगर इसी तरीके से हरि नाम को प्रचार नहीं करते थे तो आज इस जगत का क्या हाल होता था। श्री भक्ति शांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने अगर इसी धराधाम में अपने को प्रकटित नहीं करते थे तो इसी धराधाम का हाल क्या होते थे। इसके लिए कहते कि लवो मात्र साधु संग सर्वशास्त्रिक। और ये साधु संघ का विपरीत जो है वो है जोजित संघ। इस जोजित संघ के द्वारा श्री भक्तिविनोद ठाकुर इस जोजित संघ का ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन भी किए कि जोजित संघ का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति जब पड़ोसी के द्वारा अपना इंद्रिय भोग को संभाल लेते हैं उसको कहते हैं कि जोजित संघ। और इसी जोजित संघ के द्वारा आपको अधोगति प्राप्त होता है, जिसके लिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन किए कि जितने प्रकार अपर संप्रदाय है उसी प्रकार अपर संप्रदाय से दूर में रहना है। शास्त्र में वर्णन की है कि 13 प्रकार का अपर संप्रदाय का व्याख्या की है भक्ति शांत सरस्वती ठाकुर। आउल बाउल कर्ता भाजा नेरा नेरी दल, आउल बाउल कर्ता भाजा नेरा सर्वे साई सहजिया सखी भेकी स्मार्त तो जात गोसाई, অতি বাড়ি চূড়াধারি গৌরাঙ্গ নাগরী। এই 13 প্রকার কা অপসম্প্রদায় কা বর্ণন কি হ্যায়। এক বৈষ্ণব আচার্য তোতারাম দাস বাবাজি মহারাজ ইস 13 প্রকার অপসম্প্রদায় কা বর্ণন শাস্ত্র মে কি হ্যায়। আর এই অপসম্প্রদায় কি সে দূর মে রহনা ভক্তি মে আগে বাড়নে কা সবসে বড়া কার্য হোতা হ্যায়। श्री भक्ति चंद सरस्वती ठाकुर वर्णन किए कि ये जो अपर संप्रदाय है ये धर्म ध्वजी। इस धर्म ध्वजी का अर्थ बताए कि इस धर्म ध्वजी का अर्थ होता है कि उनका मुखारविंद से धर्म का वार्तालाप होते हैं लेकिन हृदय से जो बात कर रहे हैं उसका विपरीत भाव विपरीत मनोभाव व्यक्त कर रहे हैं। इसको कहते हैं कि धर्म ध्वजी। इसके लिए तोताराम दास बाबा जी महाराज कहते हैं कि यही 13 संगी नहीं कोरी। ये जो 13 प्रकार का अपर संप्रदाय है ये 13 प्रकार का अपर संप्रदाय से हर समय भक्त को दूर में रहना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जब इसी धराधाम में अवतीर्ण हुए थे उसी समय ये अपर संप्रदाय का बहुत प्रभाव है। आज का दिन में भी अपर संप्रदाय बहुत प्रभावशाली है। इसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं कि गलाय कंठीरे माला देखो तो वैष्णवेर खेला मने तारे कहो किछु संग मनो तारे रहिनार मनो किछु भावनार করে পাছে সদি সদার নারী সঙ্গ। বলতে হয় কি গলে মে বহুত হি সুন্দর কণ্ঠী মালা বহুত হি সুন্দর তিলক বহুত হি সুন্দর শিখা রাখ দিয়ে হে লেকিন মন মে উনকা ভাবনা হ্যায় নারী সঙ্গ করনে কা। ইসকো কহতে হ্যায় কি অপসম্প্রদায়। আর ইসি প্রকার অপসম্প্রদায়কে দ্বারা কই ব্যক্তি আগর সঙ্গ প্রাপ্ত করে তো উসকো অধোগতি প্রাপ্ত হোতা হ্যায়। और भगवत संग प्राप्त करने में क्या होता है। दस्यु रत्नाकर जिन्होंने असत संग के द्वारा कितने सारे ब्राह्मण को हत्या करके उनका धन संपत्ति को लूट लिए थे। इस बार मायापुर में श्री जगदम्बा गोसाई महाराज बता रहे थे कि दस्यु रत्नाकर ने इतने सारे ब्राह्मण को उन्होंने हत्या की थी कि जिसके द्वारा इतने ब्राह्मण का जो जेनुई जो 4 बैल गाड़ी का समान हो गए थे जेनुई। तो सोच लीजिए कि कितने सारे ब्राह्मण को दुष्ट रचना करने हत्या की थी, निधन की थी, उनका धन संपद को लुंठन कर लिए, कि जिसका जेनी हो गए थे चार बैलगाड़ी का समान। और वही दुष्ट रचनाकर जब थोड़ा समय के लिए सत्संग प्राप्त किए थे, साधु संग किए थे, वही दुष्ट रचनाकर महान ऋषि बन गए। तो भगवान भक्त को ज्यादा प्यार करते हैं। जैसे देखिए कि गोविंद घोष ठाकुर जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को अंतरंग प्रिय पार्षद, जो श्री चैतन्य महाप्रभु जो सात प्रकार का कीर्तनिया टीम बनाए हैं, उसमें से एक कीर्तनिया का टीम का नाम था गोविंद घोष ठाकुर। अरे वही गोविंद घोष ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु को हर जगह में हर लीला में उन्होंने भाग ली थी। जब गोविंद घोष ठाकुर का शादी विवाह नहीं हुए थे तब महाप्रभु हर जगह में ये गोविंद घोष ठाकुर को लेकर जाते थे साथ में। तो महाप्रभु एक एक दिन एक एक घर में गए प्रसाद लेने के लिए। एक दिन एक भक्तों का घर में उन्होंने पहुंच गए थे प्रसाद लेने के लिए। तो प्रसाद लेने के बाद महाप्रभु कह रहे कि गोविंद आज मैंने बहुत कुछ खा लिया हूं, मेरे को आप कुछ होड़ी तोकी दो। होड़ी तोकी, होड़ी तोकी बोल के एक फल होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं होड़ी तोकी, तो होड़ी तोकी बनौली वो भी एक बार बताए थे लीला को, मेरे को याद है आज भी। तो इस होड़ी तोकी बोलते कि मेरा मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पाए, मेरा पेट बराबर नहीं चल रहा है, तो आप मेरे लिए कुछ होड़ी तोकी लेकर आओ। तो गोविंद घोष ठाकुर बाजार में ढूंढते ढूंढते होड़ी तोकी मिला। तो बहुत समय बाद गोविंद घोष ठाकुर ने होड़ी तोकी लेकर आया, तो महाप्रभु को दे दिए, महाप्रभु ने खा लिया होड़ी तोकी। दूसरा दिन वही गोविंद घोष ठाकुर को लेकर महाप्रभु दूसरे एक भक्त घर में गए प्रसाद प्राप्त करने के लिए। जब प्रसाद प्राप्त कर लिए तो महाप्रभु पूछने कि गोविंद काल आपने होड़ी तोकी लेकर आए थे, आज भी मेरे को होड़ी तोकी दो। तो गोविंद घोष ठाकुर ने तुरंत उनको होड़ी तोकी दे दी। तो महाप्रभु पूछने लगे कि गोविंद काल मैंने जब आपको बस पूछा था कि अब होड़ी तोकी दो, आपने बहुत लेट किए थे होड़ी तोकी लेने में, लेकिन आज आपने इतना जल्दी कैसे लेकर आए। तो गोविंद कहा दिए कि प्रभु काल आपने जब मेरे को बताया था ना होड़ी तोकी लिए, मैंने ढूंढते 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 मैंने परेशान हो गए, तो बाजार में जाकर किसी तरीके से मैंने लिया था, उसमें से मैंने कुछ होड़ी तोकी रख दिया था मेरा जेब में, तो अगर आपने जरूर आपको कुछ जरूरी होगा तो मैं आपको तुरंत दूंगा, इसके लिए आज जब आप मांगे तब मैंने आपको तुरंत दे दिया। तो महाप्रभु कहने लगे गोविंद हम लोग घर छोड़कर आए, ये संचय वित्ति हमारा जीवन में एक भक्ति का अंतराय होता है, भक्ति का बंधन हो जाता है। आपका आज भी आज का मन में ये संचय वित्तीय भावना प्रकटित है तो आप एक काम करो, आप घर में जाकर आप होड़ी भजन करो। तो गोविंद घोष ठाकुर ने बड़ा दुखी हो गए सुनकर, ये महाप्रभु मैंने को तक दे दिए, लेकिन महाप्रभु का सामने कुछ बोल भी नहीं पाए उन्होंने। तो महाप्रभु को छोड़कर गोविंद घोष ठाकुर ने अपना घर में आए और पूरा दिन भर रोना चालू की, लेकिन महाप्रभु उनको कृपा की किस तरीके से, गोविंद आप रो मत, निश्चित रूप से आप एक दिन होड़ी भक्ति को प्राप्त कर पाओगे, मैं आपको दर्शन जरूर दूंगा, लेकिन आप घर में जाकर आप होड़ी भजन करते रहो। तो गोविंद घोष ठाकुर घर में वापस आने के बाद दिन रात रोना चालू किए और होड़ी भजन करने लगे। एक दिन सुबह उठकर उन्होंने गए गंगा में नहाने के लिए। गंगा में नहाने के बाद जब वापस आ रहे थे गंगा का सामने उनको एक लकड़ी मिले, लकड़ी, तो उन्होंने सोचा कि कोई व्यक्ति मर गए उसको जलाने वाला जो लकड़ी होता है इसी लकड़ी है, तो उन्होंने सोचा कि देखो मेरा पूरा शरीर दुर्गंध हो गए, चलो लकड़ी को मैंने वापस कर देता हूँ। तो वापस उन्होंने पार में फेंक दिए, फिर गंगा में नहाकर वापस आए। तो जब रात हो गए गोविंद घोष ठाकुर जब शरण ले लिए तब महाप्रभु उनको सपने में आए। महाप्रभु कहने गोविंद आप मेरे को पहचान नहीं पाए, मैंने आपका सामने लकड़ी होकर पहुंच गए थे लेकिन आप मेरे को फेंक दिए हो। दूसरा दिन गोविंद घोष ठाकुर गंग के तट में गए, जाकर देखा कि उसी लकड़ी उसी तरीका से उधर पड़े हुए है एज इट इज। गोविंद घोष ठाकुर उसी लकड़ी को लेकर आए, आकर एक मिस्त्री को बुलाए, बुलाकर बहुत ही सुंदर एक गोपीनाथ विग्रह उन्होंने बना लिए और उसी विग्रह को उन्होंने सेवा पूजा करना चालू किया महाप्रभु का भाव से। ये स्वयं महाप्रभु मेरे सामने हैं, इसके भावना से उन्होंने सेवा पूजा चालू की। थोड़ा दिन बाद गोविंद घोष ठाकुर शादी विवाह की, आ शादी विवाह हो जाने के बाद उनका एक पुत्र संतान हुई जिसका नाम है गोराचार। तब गोराचार का जब उम्र हो गई 5 की 6 साल, तो गोविंद घोष ठाकुर एक दिन कहने लगी, गोराचार मैं तेरा बाहर जा रहा हूं, मेरा जो सेवित विग्रह है गोपीनाथ इसका अच्छे तरीके से पूजा करना और आपका माता ने घर में भोग बन रहे इसको आप अर्पण कर देना। तब गोराचार कहने, ठीक है पिताजी आप जाओ बाहर, आप निश्चित रूप से जाओ, मैं ठाकुर जी को अच्छे तरीके से मैंने खिला दूंगा। तो गोविंद घोष ठाकुर बाहर चला गए, गोराचार गए, माता ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत प्रकार व्यंजन बनाए। तो व्यंजन बनाकर जब गोपीनाथ के सामने लेकर गए तो गोराचार कहने लगे कि हे गोविंद, हे ठाकुर, हे गोपीनाथ, मेरा पिताजी ने आपको इतना साल तक खिला रहा है लेकिन मेरे को कुछ मंत्र वगैरह कुछ भी नहीं आता है, लेकिन आप मेरे हाथ से खा लो। तो ऐसे बहुत बार बोलते 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 गोराचार ने रोना चालू की, जी ठाकुर जी आप मेरे हाथ से खाओ। तो ठाकुर जी कहने लगे कि सुनो गोराचार, मैंने आपका हाथ से मैं खा सकता हूं लेकिन एक शर्त है। बोलते कौन सा शर्त है आप बताओ। बोलते शर्त एक ही है कि आपका हाथ से मैंने जब खा रहा हूं आप ये वार्ता को किसी को मत बताओ। तो गोराचार ने कह दिया कि ठीक है मैंने किसी को नहीं बताऊंगा लेकिन आप तो मेरा हाथ से खा लो। तो गोविंद ने जो थाली लेकर गए थे भोग में, भोग का थाली लेकर गए, उसी थाली से भगवान ने थोड़ा कुछ खा ली। खाने के बाद गोराचार ने उसी थाली को वापस लेकर आए, तब तक गोविंद घोष ठाकुर वापस आ गए। तो गोविंद घोष ठाकुर आके पूछने लगे कि गोराचार आपने ठाकुर जी को खिलाया? बोलते हां मैंने ठाकुर जी को खिलाया हूं। तो गोराचार जब थाली लेकर वापस आए तो आपने माता को कहने लगे, माता मेरे को बहुत भूख लग गई, आप मेरे को कुछ खिलाओ, मैं ये भूख को मैं सहन नहीं कर पाता हूं। तब माता ने देख ली कि अरे ये भोग का जो थाली है एक साइड से कोई खा लिए। तो माता ने सोचने लगे कि गोविंद घोष इतना साल तक ठाकुर जी को भोग लगा रहा है लेकिन इसी तरीके से भोग का थाली से एक पाट में कोई कुछ खाया मैंने देखा भी नहीं कभी। लगता है मेरा बेटा को भूख लग गई, भूख का कारण मेरा बेटा ने उसी थाली से खा ली। तो माता और पिता दोनों मिलकर गोराचार को पूछने लगा, बताओ साही ये ठाकुर जी ने खाया कि आपने खा लिए? बोलते नहीं 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 ठाकुर जी ने खाया। बोलते ठाकुर जी इसी तरीके से कभी खाते ही नहीं। तब गोराचार ने कहा दी सच बात। जब उन्होंने सच बात बताए तो तुरंत उसका मृत्यु हो गई। घर का एक ही पुत्र है गोराचार। तो गोविंद घोष ठाकुर तथा उनका धर्मपत्नी ये दोनों एकदम दुखी हो गए थे सुनकर। कहने लगे ठाकुर जी के सामने कि गोपीनाथ मैंने आपको इतना साल तक मैंने आपको सेवा कर रहा हूं, आपका सेवा करने से मेरे को फायदा क्या मिले? एक ही मेरा पुत्र था जिस पुत्र को आपने लूट लिए हो, जिस पुत्र को आपने लेकर गए हो, तो आपको सेवा करने से मेरे को फायदा क्या है? तो गोपीनाथ कहने लगे कि गोविंदा आप मेरे को किसी को उच्छिष्ट मत दिया करो, अगर आपको कुछ देना भी है तो सही तरीका से आप दान दो, किसी को उच्छिष्ट मत देना। आपका पुत्र चला गया ये सही बात है लेकिन मैंने आपका पुत्र रूप से मैंने आपको सेवा करूंगा। तो गोविंद ठाकुर जी को कहने कि आपने मेरा एक ही पुत्र था गोराचार, उसको आपने छीन लिए हो लेकिन मेरा मृत्यु होने के बाद मेरे को श्राद्ध करने का पिंड दान देने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है मेरे वंश में, मेरा परिवार में कोई भी नहीं है। तो ठाकुर जी कहने लगे कि गोविंदो आप दुखी मत रहो, आज से आप दोनों मिलकर मेरे को पुत्र रूप से सेवा करो, मैं आपका पुत्र का जितने सारे कर्तव्य है मैंने सब पूरा करूंगा। उसी दिन से गोविंद घोष तथा उनका धर्म पत्नी दोनों मिलकर ठाकुर जी का सेवा करना चालू की। थोड़ा समय बाद गोविंद घोष का धर्म पत्नी गुजर गई, गोविंद घोष अकेला हो गए, अकेला होकर उनको सेवा करना चालू की। एक दिन गोविंद घोष का भी मृत्यु हो गए। जितने सारे गांव वाले थे सब लोग गोविंद घोष का मृतदेह को लेकर शमशान भूमि में पहुंच गए। आ शमशान भूमि में जाने के बाद गोविंद घोष को दाह किए। आज भी वो जगह वर्तमान है जो जिसका नाम है अग्रदीप। तो शमशान भूमि में दाह करने के बाद जब गांव वाले सब वापस आए, आकर देखा जिस गोविंद घोष जिस ठाकुर जी का सेवा वगैरह करते रहते थे उसी ठाकुर जी का वस्त्रों का कलर चेंज हो गए। किस तरीके से वस्त्र धारण किए, जैसे कि बंगाल में एक संस्कृति है आज भी, माता पिता जब गुजर जाते हैं तो पुत्रों ने सफेद कपड़ा पहन लेते हैं और गले में एक चेन डालते हैं जनेऊ के साथ। तो गांव वाले जब वापस आए, आकर देखा कि ठाकुर जी जो ड्रेस पहन के सुबह थे लेकिन शाम को उसी ड्रेस का कलर भी चेंज हो गए, ठाकुर जी ने सफेद कपड़ा पहन लिया। और ठाकुर जी को जो सफेद कपड़ा देखा तब तो गांव वाले चर्चा करने लगे, अरे ये गोविंद घोष एक बार बताए थे कि भगवान जब मेरा मृत्यु हो जाएगा तो भगवान स्वयं मेरे लिए पिंडदान करेंगे, मेरे लिए साथ करेंगे। तो देखिए ये भक्त और भगवान का लीला होता है। गोविंद घोष ठाकुर गुजर गए लेकिन भगवान स्वयं उनको पुत्र रूप लेकर उनको श्राद्ध वगैरह की उनको पिंड वगैरह दिए। आज का दिन में भी वो लीला कार्यक्रम होता रहता है। ये गोपीनाथ विग्रह आज भी कृष्णनगर राजबाड़ी में स्थापित है वो विग्रह। बहुत सारे भक्त जाते हैं वो दर्शन भी करने के लिए। और यही गोविंद घोष का तिरोहा तिथि में जो गोविंद घोष का जो समाधि है अग्रदीप बोलते हैं उसको, मायापुर नवद्वीप से थोड़ा दूर स्टेशन पहले मैंने कटवा का पहले है अग्रदीप। इसी अग्रदीप में आज भी ये गोविंद घोष ठाकुर का तिरुभाव तिथि में ये गोपीनाथ विग्रह कृष्णनगर राजबाड़ी से गंगा का तट पार होकर ये अग्रदीप मंदिर में आते हैं और गोविंद घोष ठाकुर का तिरुभाव तिथि में वो भी पिंडदान वगैरह करते रहते हैं। ये है भक्त और भगवान का लीला। भक्त अगर प्रेममयी भाव से भगवान को सेवा करे तो हर तरीके से भगवान उसको रक्षा कर देते हैं। नलकुबेर मुनि के कुछ भी नहीं किए थे, जीवन में कभी भी भक्ति का भाव भी उच्चारित नहीं किए, लेकिन फिर भी नारद मुनि उनको कृपा किए। क्यों ना, थोड़ा समय के लिए उनको संग मिला था। जिसके कारण नल कुबेर और मुनिग्रीव उद्धार हो गए। अरे गोविंद घोष ठाकुर जीवन का शुरू से उन्होंने भगवान का सेवा पूजा की। जब उनका मन में दुख आ गया कि हे गोपीनाथ आप मेरा एक ही पुत्र को आपने छीन लिए हो मेरा हाथ से, तो मेरा परिवार को रक्षा करने के लिए कोई भी नहीं है, इवन मैं अगर मर भी जाऊं मेरे को श्राद्ध करने के लिए मेरा परिवार में कोई भी नहीं है, आप मेरा एक ही पुत्र को आपने छीन लिए हो। ठाकुर जी कहते कि गोविंदो आप रो मत, आज से आप दोनों मिलकर मेरे को पुत्र रूप से आप सेवा करते रहो, आपका पिंडदान करने के लिए मैं हाजिर रहूंगा। जिसके लिए कहते कि अद्यपि लीला करें श्री गौर राय कोनो कोनो भगवान देखी बारे पाए। आज का दिन में भी श्री गौरचंद्र भगवान का लीला विलास चलते रहते हैं। जो भगवान व्यक्ति है वो इसको दर्शन कर सकते हैं। तो थोड़ा समय के लिए अगर किसी को साधु संघ मिले, जिसके लिए लवो मात्र साधु संघो सर्वशास्त्र का लवो मात्र, थोड़ा सेकंड के लिए भी अगर मिल गया किसी को, सुत गोस्वामी पाद ऐसे कोई बड़ा घर का ब्राह्मण परिवार का संतान नहीं थे, ब्राह्मण परिवार का नहीं है। एक श्री बोबज बताए कि असंस्कृति परिवार का नीच कुलद भूत संतान सुत गोस्वामी पा, जिसका घर में मतलब कल्चर बोलकर कुछ भी नहीं था, संस्कृति बोलकर क्या था कुछ भी नहीं था, इसी परिवार से आए हुए सुत गोस्वामी पा, फिर भी नैमिषारण्य क्षेत्र में साधु संघ के द्वारा उन्होंने साधु संघ प्राप्त की थी। और देखिए महान आचार्य बन गए उन्होंने। इसके लिए कलि युग में साधु संघ का सबसे जरूरी होता है। साधु संघ सर्वशास्त्र कहे लवोमात्र साधु संघ, तो ये साधु संघ का सबसे जरूरी होता है। जिसके लिए श्रील प्रभुपाद ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ तैयार की थी। ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ सिर्फ ऐसा नहीं कि ठाकुर जी विराजमान है, ठाकुर जी को आके अपने दर्शन किए, प्रणाम किए, प्रसाद लेकर घर वापस चला गए, इसके लिए नहीं बना है। एक शिक्षा प्रतिष्ठान रूप से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ श्रील प्रभुपाद जी ने तैयार की थी कि शिक्षा प्रतिष्ठान में आकर व्यक्ति ने कुछ शिक्षा को प्राप्त करे, कुछ ज्ञान को प्राप्त करे, कोई साधु संघ को लाभ उठाए, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। श्री प्रभुपाद जी ने बताया मैंने से ये तरीका से मैंने मंदिर नहीं बनाया कि मंदिर में आए ठाकुर जी का दर्शन करे प्रसाद लिया और भग जाए, इसके लिए नहीं है। मैंने ये प्रतिष्ठान को बनाया कि व्यक्ति आकर कुछ ज्ञान को प्राप्त करे, जिस ज्ञान के द्वारा वो सोच सकता है कि मेरा जीवन का सही कर्तव्य क्या है, आज साधु संघ के द्वारा मैं क्या ज्ञान को मैं प्राप्त कर सकता हूं। ये कलि युग में सबसे जरूरी होता है ये साधु संघ को प्राप्त करना। तो भगवान अगर जिस तरीका से निर्देश दिए उसी हिसाब से अगर कोई व्यक्ति चले तो अपना जीवन को सुखी बना सकते हैं। कोई भी हर व्यक्ति सुख का पीछे भागते रहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि चाहता है कि मेरा जीवन में दुख ही दुख आ जाए। हर व्यक्ति सुख का पीछे भागते रहते हैं, लेकिन सुख को कौन प्राप्त कर सकते हैं? सुखे दुखे परम कित्वा लाभा लाभो जया जयो। तो सुख को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने भगवान का निर्देश के हिसाब से आपने जीवन को विदा है। साधु संगो सर्वशास्त्र कहे, इसके लिए कलि युग में सबसे जरूरी होता है ये साधु संग करने का। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाही छे केवा, इसके लिए साधु संग का सबसे जरूरी होता है। तो नलकुबेर और मणिद्वीप दोनों ने इतने सारे गंधा काम किए थे, फिर भी नारद मुनि के द्वारा उनके श्राप का माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त हो गए थे, जिसके लिए ये दोनों वृक्ष जोनि प्राप्त होने के बाद भी भगवत धाम को प्राप्त किए। भगवान सिर्फ नारद मुनि का वचन को सत्य किए थे, जिसके लिए नलकुबेर और मणिद्वीप को उद्धार हो गए। जिसके लिए कलि युग में सबसे जरूरी होता है ये साधु संघ करने के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दंतरा श्रीमद भागवतम की शील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे मंचाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो